Hare Krishna. 12th of December 2012, Wednesday, Surat Bhagavatam class, Canto 7, Chapter 9, Text
Thank you. रहते हुए भी कृष्ण भावना से परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भरित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं वे दुखी नहीं है, किंतु जिसके पास कृष्ण भावना की लेह पूंजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रत है वह न केवल मूर्ख है अपितु अत्यंत दुखी भी है। लाल महाराज एक ही साथ सुखी तथा दुखी थे। कृष्ण भावना भवित होने के कारण अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यंत दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विषय योजनाएं बनाते हैं।
अच्छा तात्पर्य
ओम
सहगणरत्नाथमिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिरसिकं कृष्णचैतन्यदेवं संभव है कि श्याम कृष्ण की पत्नी के घर में एक और असुर होगा, तो घसीट कर ले जा रहे थे देवता इस उद्देश्य के साथ कि जब बच्चा पैदा होगा उसका वध कर देंगे। पंचानंद मुनि जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि जो बच्चा दौलत भी करने हैं वो सुर नहीं उनके कोटि का भक्त है। और फिर नारद मुनि ने प्रहलाद की माँ को अपने आश्रम शरण दिया और दिव्य उपदेश दिया जो कि प्रहलाद ने स्वीकार किया था जो वो माता के घर में थे। इसलिए प्रहलाद के पिता कभी ये नहीं समझ पाए कि मेरे बेटे को दिव्य ज्ञान कौन दे रहा है। कई बार प्रहलाद के पिता शानदार रामायण का दो अध्यापक थे प्रहलाद के, उनसे पूछते थे कौन मेरे बेटे को विष्णु का ज्ञान दे रहा है, और शानदार रामायण का कहते थे हम तो नहीं दे रहे, हमें खुद नहीं पता कौन दे रहा है। तो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था कहाँ, जो वो माता के घर में थे। तो प्रहलादनाथ की शिक्षा हम भगवान के संतुष्टन में पढ़ते हो, किस प्रकार उन्होंने अपने साथियों को उपदेश दिया कि ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, तो हमारा सत्पर्य हो। इसलिए 500 की आयु से हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। और हालांकि प्रहलाद को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने किसी प्रकार से भक्ति नहीं त्यागी। तो एक श्लोक में आप क्या पढ़ते हो, प्रहलाद कह रहे हैं ये शेष महापुरुष भौतिक जगत से चने की भयभीत नहीं हो। तो जो भक्त है भौतिक जगत से भयभीत नहीं होता, केवल एक ही कारण है कि जो भगवान के लीलाओं ऐश्वर्य में लीन है, दूसरे शब्द में भक्ति में लीन है। इस श्लोक के तात्पर्य की समाप्ति में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक तरफ से प्रहलाद महाराज बड़े प्रसन्न थे, क्यों, क्योंकि जुड़े हुए थे भक्ति में, और दूसरी तरफ से वो दुखी थे, क्यों, जब वो देखते थे कि किस प्रकार से भौतिकवादी प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। अगर आप ध्यान से देखो आज के समाज में, तो जो विज्ञानी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो केवल यही प्रयास कर रहे हैं कि सुख की दुख की स्थिति को सुखाया सुखायाम की बजाय सुखायाम प्राप्त हो, दुख की स्थिति को बदलकर सुख की स्थिति प्राप्त हो। बहुत एक इंसान है कि बेसिक जैसे विज्ञानी ने अनेक बीमारियों का इलाज करते हैं, एक बीमारी का इलाज ढूंढते हैं तो कल नई बीमारी आ जाती है, और आज के वातावरण में इतनी बीमारियाँ हैं, बच्चों को कैंसर हो रहा है, हमारे कई भक्त विदेश में भी डॉक्टर हैं, तो मुझे वो कह रहे थे कि आजकल बच्चों को वो ऑपरेशन होकर बीमारी होती है जो फिर पूरा कुछ साल पहले बूढ़ों को होती थी। तो बहुत ही समाज में प्रयास किया जा रहा है क्या कि हम किसी प्रकार से दुख की स्थिति को बदले सुख की स्थिति में, जैसे कि आजकल एंटी एजिंग दुकानें हैं पश्चिम देशों में। एंटी एजिंग का अर्थ है कि वो दुकान है जिसमें बुढ़ापापन छुपाने की सुविधा प्राप्त करती है, तो जैसे कि अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उसको ध्यान रखना, बाल गंदे हो रहे हो तो बाल मछली पाल लगा दे देखेगा नहीं। हियरिंग एड, पहले जमाना था जब अगर कोई बहरा था तब दूर से देख सकते थे, बड़ा हियरिंग एड होता था, अब उन्होंने इतना छोटा हियरिंग एड कर दिया आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर आप एनर्जी पहनना चाहते हैं तो लेजर ऑपरेशन करा सकते हो और अनेक असुविधाएँ। तो अगर ध्यान से देखा जाए भौतिक समाज में यही प्रयास किया जाता है क्या कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदला जाए। और जो भक्त है वो जानता है कि चाहे कितना भी प्रयास हो भौतिक संसार में बेसिक शुरू से अंत तक, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अध्यात्मिक का लाभ उठा रहा है। पांच स्कंद में आप भगवान ऋषभदेव जी की कथा पढ़ते हो। भगवान ऋषभदेव जी भगवान के अवतार हैं और उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया अपने पुत्रों को, आनंद देहा बाल जन्म लो के। कहते हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसका पशुओं के समान उपयोग नहीं करो। किस लिए करो? तपो दिव्य पुत्र का ये न करो, हे मेरे पुत्र तपस्या का पालन करो। किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो इसी पांचवें अध्याय में पांचवें स्कंध के यहाँ की आपको प्रहलाद जी ऋषभदेव भगवान का उपदेश प्राप्त होता है। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं नूनम प्रमता चुनते विकर्म। जो व्यक्ति विकर्म कार्य कर रहा है, विकर्म कार्य किसे कहते हैं? जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य। तो जो व्यक्ति विपरीत कार्य कर रहा है वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख? क्यों है? क्योंकि आज जो धैर्य से प्राप्त हुआ है वो केवल उसे कष्ट दे रहा है और विकर्म कार्य करके आप परिणाम होगा कि फिर से धैर्य प्राप्त होगा जो क्या केवल कष्ट कर देगा। तो हमारे शास्त्रों में बड़े स्पष्ट रूप से ये स्थापित किया जाता है कि भौतिक संसार में क्लेश क्लेश दुख ही दुख है। अब ये साल 2012 समाप्त हो रहा है, यह है क्रिश्चियन न्यू ईयर, पर बहुत कम लोग ये सोच रहे क्रिश्चियनिटी का इतना भारी प्रभाव है। ये क्रिश्चियन न्यू ईयर अंतर्राष्ट्रीय नया साल है। वैसे तो हिंदुओं में नया साल शुरू होता दिवाली के बाद, वैष्णव का शुरू होता है गौर पूर्णिमा के बाद, हर देश में अलग अलग। पर हम अक्सर आइडेंटिफाई करते हैं किसके साथ? ये क्रिश्चियन न्यू ईयर के साथ। तो 2012 समाप्त होने वाले हैं और 2013 शुरू हो जाए। और जब नया साल शुरू होता है हमने एक दूसरे को क्या कहते हैं? नया साल इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो रहा है और पूरा साल सुखी रहो। हैप्पी न्यू ईयर का अर्थ क्या है? अभी नया साल शुरू होने जा रहा है, पूरा साल सुखी रहो। डॉक्टर का दर्शन मत करना, हॉस्पिटल में नहीं जाना और हर प्रकार से सुख हो। और अंत में आप क्या देखते हो? अंत में देखते हो कि क्लेश क्लेश। तो जो आध्यात्मिक वाणी है प्रार्थना कह रहे हैं कि उन्हें भौतिक जगह की तनिक भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं जिसमें आपके यश तथा कार्य प्राप्त के विचारों में लीन रहता है, लीन रह रहा है। तो जो भक्त है भगवान के यश तथा कार्यकलापों में लीन रहता है। ये नहीं आप कह सकते हम भक्त हैं और हमें भौतिक समाज का भय भी भय नहीं है, सब जुड़े रहो भौतिक कार्यों में। सराना दिन रात जुड़े थे किसमें? भगवान के विचारों में। और भगवद गीता में इस विषय में हम सबको क्या उपदेश मिलता है? मन मना भाव मन भक्त्यो मध्याज्ञ मान नमस्ते माम वाचन सत्यम से प्रति जने। भगवान कह रहे हैं मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मेरी सेवा करो। तो भक्तों का भाव होना चाहिए कि हम सदा भक्ति के मार्ग में जुड़े रहे। रामनाथ जी ने हमें नवदा भक्ति का ज्ञान भी दिया है जो कि उन्होंने प्राप्त किया था नवदा मुनि जी के द्वारा। तो भक्ति के ज्ञान नवदा भक्ति का ज्ञान देते हुए क्या कहते हैं? Charanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasena, Ajahn, Panam, Dasam, Satyam, Adam, Vyaya. Bhakti Rasa Vrita Sindhu Maya, Anek Vidyam Ka Varnam Hai. Rupa Goswami Ji Ko Vrindavan Bheja Tha, Chaitanya Mahaprabhu Ne. Rupa Goswami Ek Samay, Hussein Shah, Ke Rajya Ka Shasana Kar Rahe Thay, Lagvat Rahman Ji Ke Samay. पर उन्होंने नौकरी त्याग दी और महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार वृंदावन गए दो कार्यों को निभाने के लिए. एक उन स्थानों को खोजा जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी और उनकी प्रेरणा से कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ. दूसरा बाकी संबंधित प्रांतों की रचना करने के लिए. और रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, पर खास करके दो ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं जिनको प्रभुपाद जी ने अनुवाद जिनका अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में, वो हैं शिव देशों में और भक्ति रसम. तो भक्ति रसम क्षेत्र में अनेक नियम हैं और रूप गोस्वामी जी कहते हैं इन सब नियमों का मूल उद्देश्य क्या है कि हम सदा कृष्णा का स्मरण करें और कभी कृष्णा को भूलें नहीं. तो यहाँ हम पढ़ रहे हो कि प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं है क्योंकि उनके विचार उनका मन जुड़ा हुआ है इसमें भगवान की लीलाओं में भगवान के उपदेश में. तो हमें मन को बंधु बनाना है और शत्रु नहीं. और मन बंधु जब माना जाता है मन के द्वारा अपन भगवान का हम विचार कर रहे हैं. पर अगर मन द्वारा भौतिक विषय का विचार कर रहे हो ये मन क्या माना जाएगा आपका शत्रु माना जाएगा. तो कई बार आज पूछते हैं कि किस प्रकार से हम जोड़े मन को भगवान की सेवा में. तो कई साधन हैं. एक है भगवान का दिव्य आर्च विग्रह का दर्शन. भगवान प्रकट होते हैं आर्च विग्रह के रूप में. इस आर्च विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं और भगवान के आर्च विग्रह का चिंतन कर लो. और आज इंटरनेट की कृपा से आप इस्लाम के कई प्रसिद्ध मूर्तियों का दर्शन प्राप्त कर सकते हो इंटरनेट द्वारा. फिर भगवान के उपदेश का भागवतम के प्रथम स्कंद में आप पढ़ते हो कि जब भगवान प्रकट हो गए थे उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे. अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरम्भ किया जो कि बहुत ही दृष्टि से असंभव थी, पर भगवान की कृपा से उनमें वो सफलता प्राप्त कर सके. तो इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरम्भ. और जब गीता के संदेश का स्मरण आरम्भ किया उनका शोक दुख समाप्त हो गया और उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान स्वयं उनके साथ फिर रहे. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन भगवद गीता के संदेश का स्मरण कर रहे थे और उन्हें लगा कि अरे भगवान उनके साथ हैं, उसी प्रकार हम सब भक्तों को क्या करना चाहें गीता के संदेश का मरण करना चाहिए. ये जरूर है कि खास करके गीता जयंती के महीने भक्तों में बड़ा है उत्साह रहता है ग्रंथों का वर्तन करने के लिए खास करके भगवद गीता. और हमें साथ में ही गीता का अध्ययन भी करना चाहिए. प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया कि ग्रंथों के वचन की सेवा तो बड़ी आवश्यक है, पर साथ में उन्होंने ये भी कहा भक्तों को कि हमें इन दर्दों का अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भगवान देखते हैं कि हम उनके उपदेश को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें योग्यता देते हैं जिसके द्वारा हमने समझ सकते हैं। तो एक तरफ से तो प्रचार का उत्साह होना चाहिए, तो साथ में हमें ये उत्साह होना चाहिए कि हमने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ा। तो एक और साधन ये है मन द्वारा भगवान का, भगवान के उपदेश का स्मरण करो। फिर आगे मन द्वारा भगवान की अनेक लीलाओं का स्मरण, जैसे कि कुछ दिन पहले ही दामोदर महीना समाप्त हुआ, कार्तिक का महीना जिसका एक और नाम है दामोदर महीना, और भगवान की अनेक लीलाएँ हैं और इन लीलाओं का स्मरण करो। दामोदर महीने में आप दिन रात सुबह और शाम दामोदर तट का उच्चारण कर रहे थे और भगवान के दामोदर लीला में आप क्या देखते हो, देखते हो कि यशोदा माता ने प्रयास किया अनेक रस्ते को जोड़कर भगवान को पालने के लिए, पर हमेशा ये लस्तियाँ कितनी उम्मीद छोटी निकलनी थी। इसे महान चाय ने समझाया है कि अर्थ क्या है। एक उम्मीदवार ये अर्थ है कि हम प्रयास करेंगे तो ही भगवान गुरु की कृपा से भगवान को समझ पाएंगे। ये नहीं कि प्रयास करे बिना सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएँ हैं। प्रभुपाद जी ने हमें दस स्कंद सार दिया कृष्णा भक्त में और इन लीलाओं का वर्णन करो। तो किसी न किसी रूप से प्रयास करना चाहिए कि मन जुड़े रहे भगवान के कार्यकलापों में, उनकी लीलाओं में, उनके उपदेश में। तो प्रभुनाथ जी कह रहे हैं कि वो बौद्धिक जगत भयभीत नहीं, भयभीत नहीं है, उनसे भय से रहित है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं भक्ति। ये आवश्यक है कि अगर हम भक्ति के बारे में जुड़ना सफलता चाहते हैं तो हम जुड़े रहें भक्ति की विधियों के साथ। और इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, चरण चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे कि इस प्रकार भक्ति का बीज उगता है। सबसे पहले तो महाप्रभु ने स्थापित किया ब्रह्मांड प्रभु देखकर भगवान जी गुरु कृष्ण के पापा ने भक्ति माता बीज अनेक योगियों में गुजर के पश्चात तो भक्ति सभी व्यक्ति है जैसे क्या भक्ति का बीज बनता है। तो हम सब जो जुड़े हैं इसकों के साथ अत्यंत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये भक्ति का बीज जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा उगेगा केवल अगर आप शरणम कीर्तनम का लाभ उठाओ। जिस प्रकार साधारण स्थिति में बीज से फल उगता है, पेड़ उगता है अगर पानी पिलाओ, तो शरणम कीर्तनम हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कई बार भक्त पूछते हैं हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जीव द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो जीव द्वारा भगवान का गुणगान, भगवान के प्रसाद ग्रहण करना। तो श्रवण कीर्तनम करोगे तो विष्णु स्मरण जो भाव सलाल महाराज जी इस श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं वो संभव हो पाए। और श्रवण कीर्तनम के विषय में ये कहा गया है कि श्रवण और कीर्तन का लाभ तो हर स्थिति में है, प्रधान ये हरिनाम का लाभ तो हर स्थिति में है, अगर हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे तो ये हरिनाम हमें और भी गहरा लाभ होगा या पूरा लाभ होगा। तो भक्ति का बीज उगेगा श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने आगे ये भी कहा कि भक्ति के बीज की सुरक्षा के लिए हमें साधु संघ में रहना चाहिए। साधु संघ खास करके इस कलयुग में बहुत ही आवश्यक है और इस विषय में चैतन्य चतुर्थ में कहा गया है साधु संघ में साधु संघ सर्वचार प्रकार दावा माता साधु संघ सर्वश्री है भक्तों की संगत में हो। प्रभा जी समझाते हैं कि भक्तों की संगत हम दो माध्यम से प्राप्त करते हैं, एक है भक्त भगवत और दूसरा है ग्रंथ भगवत। तो प्रभा जी ने बड़ी सुंदर संस्था बनाई है जहाँ की लगभग हर प्रदेश में केंद्र है और जहाँ की आपको भक्तों की संगत प्राप्त होती है। यहाँ दमुनि इस विषय में भगवतम के 34वें में समझाते हैं कि हमें तीन प्रकार की संगत प्राप्त हो सकती है। एक है उनकी संगत जो कि आपसे ज़्यादा एडवांस है भक्ति में, एक है उनके संगत जाके बराबर के, तीसरा है उनकी संगत जिनके पास आपसे कम अध्यात्मिक ज्ञान है। तो हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए इस स्थिति में, जब हमें मौका मिले हमारे से एडवांस भक्तों की संगत में आने का, तो हमें बड़ा प्रसन्न माना जाए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिससे श्री योग से भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। और भगवतम में उदाहरण दिया जाता है जैसे स्कंद में, जैसे मोर जब बादल को देखता है बारिश के मौसम में पहली बार तो खुशी में नाचने लगता है, उसी प्रकार जब हमें एडवांस होकर संगत में है तो हम प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा भी जो देश मिलेगा जिसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। और जो एडवांस होते हैं उनके मन में एक ही भाव रहता है किस प्रकार सबको जोड़ा जाए कृष्णा की सेवा में। जब हम बराबर के भक्तों को मिलते हैं तो उनके साथ हमारा मित्रता का भाव होना चाहिए। मित्रता का भाव है हम एक दूसरे का सहयोग दें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रभा जी कहते थे कि बहुत ही संसार समाज में जब आप किसी को मिलते हो तब तो भाव रहता है कि आप ये साबित करो आप दूसरे से कैसे ज़्यादा एडवांस हो, कैसे उसे ज़्यादा सब हो। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम मिलते हैं हमारे बराबर के भक्तों को तो उनके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। और उसका अर्थ क्या है मित्रता का भाव? भौतिक समाज में मित्रता चलती है, मित्रता द्वारा सोचते हैं हमें एक दूसरे का सहयोग दें इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में। भौतिक समाज में कोई व्यक्ति आपका मित्र रहता है जब तक आपको थोड़ा उसे लाभ मिल रहा है उसे आपसे लाभ मिलता है, सच बात। पर ऐतिहासिक जीवन में मित्रता का भाव का अर्थ है हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाए, एक दूसरे का सहयोग करें, किस लिए? भक्ति निभाने के लिए। जैसे कल रात में कह रहा था कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर नित्यानंदा इकट्ठे गए प्रचार करे, तो मित्रता के भाव में हम इकट्ठा प्रचार करते बैठे हरिनाम करते हैं करते हैं शास्त्र पढ़ते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं एक दूसरे का सहयोग देते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भौतिक समाज में हम एक दूसरे का नुकसान निकालने का प्रयास करते हैं, पर ऐतिहासिक जीवन में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के गुणों को देखें, और एक दूसरे के गुणों को देखोगे फिर एक दूसरे के प्रति आदर भी रहेगा। पर अगर हम केवल एक दूसरे को लेकर नुकसान को देखेंगे तो फिर क्या ये संभव है कि आप अपराध करते जाओ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय में ये कहा कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है। कैसे सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है? जब कोई पागल हाथी अंदर आता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो सकता है अगर आप किसी प्रकार से अपराध करो, खास करके वैसे अपराध। अनेक प्रकार के अपराध हैं, एक है दूर अपराध, दूसरा है नाम को उच्चारण में अपराध, जैसे हम दस नामों का उच्चारण करते हैं रोज। फिर सेवा अपराध, खास करके जब आप सेवा में जुड़े हो आज तक विग्रह की, तो अनेक प्रकार के अपराधों से हमें करना चाहिए। तो अपराधों से हमें बचना चाहिए। भागवतम के पांचवें स्कंध में आप महान रोगना और जत भारत की कथा पढ़ते हो। जत भारत पूर्व जन्म में भारत महाराज थे, और क्योंकि उस जन्म में एक छोटी सी गलती की थी कि वह हिरण के प्रति बड़े गहराई से आकर्षित हो गए थे, और इस कारण हमें अगला जीवन हिरण के रूप में ग्रहण करना पड़ा, जिसके पश्चात एक ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ। तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया था क्या मैंने वो गलती नहीं करनी जो पहले कर बैठा था। उनके समाज में व्यवहार था जैसे वो गूंगे हैं और बहरे हैं, तो गूंगे और बहरे थे नहीं थे आत्मज्ञान। तो जब उनको जोड़ा गया वहाँ रोगना की पलती उठाने की सेवा में, वहाँ जब भारत बड़े सावधानी से चल रहे थे, पैरों को नीचे रखने में पहले देखते थे कुछ चीटी वगैरह तो नहीं है, और दूसरे जो सेवक थे उन्होंने इस विषय की चिंता की। तो राजा रहोगना जिसको पलकी में उठा कर जा रहे थे, प्राचीन समय में जो राजा इत्यादि होते थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था, बाकी लोग तो रखने जा रहे थे। तो राजा जा रहा था कपिला आश्रम में उपदेश सुनने के लिए। राजा की इच्छा जल्दी 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 जाओ जल्दी जाओ, कोई पलकी तेज जाने के बजाय ज़्यादा तीन में जाने लगी। राजा ने डाटा क्यों तो लोग जल्दी जाने के बजाय रास्ते जा रहे। उसने सेवक ने कहा हम इसके कारण नहीं है, ये जो नया व्यक्ति हमने जोड़ा है वो इसका कारण है। तो राजा ने जन भारत को डाटा, जब जन भारत ने कह रहे कह लिया, फिर जब जन भारत ने उपदेश देना या उत्तर देना आरंभ किया तो राजा तुरंत समझ गए क्या ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, ये मूर्ख नहीं है, ये बहरा नहीं है जैसे मैं सोच रहा था, ये तो आत्मज्ञानी है। तो राजा पलकी से तुरंत पीछे आया और जय बालक का प्रणाम किया, कहा मुझे इंद्र के थंडरबोल्ट की चिंता नहीं, मुझे क्या चिंता है मैं किसी प्रकार से वैष्णव अपराध नहीं करूँ। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इस विषय में बड़ा सुंदर उदाहरण है महाप्रभु का। महाप्रभु जी सबको दया दे रहे थे, पर भी जो माता है उनके मन में बड़ा क्रोध था अद्वैत आचार्य के प्रति। वो सोचती थी कि मेरे बेटे बड़ा बेटा विश्वरूप घर से चल पड़ा और छोटे बच्चे ने भी संन्यास लिया, इसमें अद्वैत आचार्य का दोष है, उनका प्रचार है, उनका प्रभाव है। तो कई बार भक्त कहते थे महात्म को आप सब पर दया कर रहे हो, अपनी माता पर दया क्यों, के ऊपर क्यों नहीं दया कर। और महाप्रभु कहते थे मैं माँ ने अपराध किया है। तो जब ये सूचना दी जाती थी अद्वैत आचार्य को, तो अद्वैत आचार्य कहते नहीं नहीं नहीं, वो जो भगवान की माता है वो कहते अपराध कर सकते। पर एक समय जब भगवान ने अपने दिव्य रूप प्रकट किया तो अद्वैत आचार्य प्रणाम कर रहे थे, सच्ची माता पीछे से आई, उनके चरण में धूल लेकर अपनी माता में लगा दिया। जब भगवान ने यह देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। तो इस लीला सब क्या समझते हैं कि भगवान ने भी इस विषय को इतना महत्व दिया कि उन्होंने अपनी माँ का उदाहरण लिया कि अपनी माता में एक क्रोध था, एक महान स्थान अद्वैत आचार्य के प्रति, और किस प्रकार क्योंकि माता ने भी माही मांगी उनके चरण के रूप देकर। तो दूसरे शब्दों में ऐसा प्राप्त से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, और शास्त्र में अनेक उदाहरण। तो भक्ति का बगीचा न चल सकता है इस माध्यम से, इस प्राप्त है, इसलिए हमें इस विषय में भी सावधान रहना चाहिए। तो भक्तों का भाव ये रहता है कि वो सदा भक्ति में जुड़े रहें। जैसे आप यहाँ देख रहे हो सलाम महाराज कह रहे हैं कि वो जुड़े हुए हैं, उनके विचार जुड़े हुए हैं किसमें, भगवान की सेवा में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे भाव जुड़े रहे भगवान की सेवा में, हमें भक्ति की विधियों का पालन बड़ी गहराई के साथ करना चाहिए। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि भगवान के शरणागत होने के लिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो कार्य हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसे त्याग करना चाहिए। और अनुकूल क्या है, साधु संत और जिन विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कब स्वामी जी उपदेश में इसमें कहते हैं उत्साह में से धैर्य सत्य क्षमा प्रवचन संग त्याग सत्य। फिर आगे वो कहते हैं जो प्रतिकूल है उसे त्यागो, और प्रतिकूल क्या है, अत्याहरा प्रज्ञा ज्ञान संघर्ष लोगे और रूपक स्वामी जी कहते हैं सूचे में, हे मेरे प्रिय मित्र, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर किसी प्रकार की। तो दूसरे शब्दों में एक तरफ से जो आध्यात्मिक भक्त है वो प्रसन्न होता है, क्यों, क्योंकि वो उस कला को सीख गया है किस प्रकार वो भक्ति में जुड़ सकता है सदा, उसके मन में कोई और विचार नहीं, बिना शंका के उनके मन में ये विचार रहता है कि भक्ति जीवन का उद्देश्य है। तो इस भक्ति का पालन किसी भी आश्रम में हो सकता है, हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार समाज का विभाजन चार वर्णों चार आश्रमों में होना चाहिए। ये नहीं कि केवल भक्ति का पालन ब्रह्मचार्य संन्यास आश्रम में, क्रियाशास्त्र में भी हो सकता है। आज हमारे क्रियाशास्त्र हैं तो बड़ी गंभीरता से भक्ति की विद्या का पालन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति का पालन हर स्थिति में हो सकता है। जब भगवान उपदेश देते सर्वधर्मान पैसा जब महान एक नाम बजा, ये उपदेश देने पूरे मानव समाज को, केवल ब्रह्मचार्य सन्यासी को नहीं। तो एक तरह से जो भक्त है वो प्रसन्न है क्योंकि उसके मन में ये भाव है कि भक्ति योग की असली माध्यम है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और प्रभु स्वयं जुड़ा हुआ है भक्ति की विद्या के पालन में। और दूसरी तरफ से जो भक्त है वो दुखी भी रहता है। और दुखी क्यों रहता है, क्यों प्रभुनाथ क्या कह रहे हैं, क्यों दुखी, और कभी वो तो सुखी है तो दुखी रहने का प्रश्न नहीं। तो दुखी वो दुखी रहता है इस भाव को लेकर कि अनेक और व्यक्ति आत्माएं हैं जो इतने मूर्ख हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम किसी प्रकार से बौद्धिक समाज में सुख की सुविधा बता सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि महाराज हमारे तो ऐसा भाव है नहीं, ये तो महाभगवत लाल बना तो आत्मज्ञानी महाभगवत पुरुष है महाजन है उनके मन में ये भाव है। हम तो पतित हैं कलयुग करके, हमें तो हमारे स्वार्थ की चिंता है, दूसरों की स्वार्थ की चिंता है ही नहीं। ये सच है, जो सच है हमारे अंदर वो भाव है ही, तो क्या किया जाए। तो हमें महान संतों के भावों में भगवान की वाणी में श्रद्धा रखनी चाहिए। जब क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं ना, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है जो मैं प्रचार कर रहा है। भगवान ही कहते हैं कि वैष्णव जो है फला तो सदी होता है। तो हमारे में वो भाव नहीं है कि हम जब देखते हैं भौतिकवादियों को घूमते हुए भौतिक बड़ी गाड़ियों में और भौतिक योजना बनाने बनाते जाते हैं, जैसे आजकल चुनाव में आपके गुजरात में आजकल परसों तो चुनाव में हर पार्टी आपको क्या कहती है, हम तुम्हें ज़्यादा इंडिया चिट्ठी देंगे। वो ये नहीं कहता ना हम तो भगवान देंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई ये नहीं कह रहा कि हम तुमको राम राज्य देंगे। वो कहेंगे भी राम राज्य प्रधान के बगैर, राम राज्य के समय समाज के पता और प्रजा अत्यंत सुखी थी, इसी प्रकार का क्रेज नहीं था। पर आज तो चाहे भारत में या किसी विश्व के किसी देश में राजनीतिक नेता अध्यात्मता की चर्चा नहीं करते, वो करते नहीं है नाम के हृदय से नहीं। तो कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान की इच्छा क्या है, हर दुखी व्यक्ति सुखी बने। श्रीमद्भागवत में भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं पांचवें स्कंध में, बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए जब देखता है तो क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ कर उसे सीधे रास्ते में जोड़ देता है। तो ये रहता है भक्त का भाव, जब वो देखता है कि भौतिकवादी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, सुखाया सुखाया की वजह सुखाया बनाने के लिए, क्योंकि मन में दुख होता है वो प्रयास करता है अज्ञानता को दूर करने के लिए, किस माध्यम से प्रचार के माध्यम से। तो एक तरह से जो भक्त हैं सदा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो भक्ति के मार्ग में जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा भूत प्रसन्न करते हरि नाम प्रचारण में एक और लाभ क्या है, आनंद बूढ़ी वर्धना, यहाँ से हरि नाम करोगे तो आनंद ही आनंद अनुभव होगा। तो दूसरी तरफ से भक्त के मन में शोक दुख भी रहता है जब वो देखता है भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक समाज में लोग इतने दुखी हैं, क्योंकि उनके मन में दुख है शोक है, इसलिए वो आगे बढ़ता है किस लिए, तो चार करने के लिए। और अगर हमारे में वो भाव नहीं भी है वो चेतना नहीं भी है तो भी हमें भगवान और शुद्ध भक्त प्रभुपद के शब्दों में विश्वास करते हुए प्रयास करना चाहिए प्रचार के लिए। प्रभुपद जी ने कहा आप प्रचार करोगे कुछ उपदेश दोगे दो तीन महीनों के लिए लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे, पर अगर तुम ग्रंथों को बांटोगे तो लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे और इस शिक्षा को अपनाएंगे। और भगवतम के अनेक श्लोक हैं जहाँ की इस प्रचार की सेवा पर बल दिया जाता है। तो हमारे में वो बुद्धि नहीं है, हमारे में वो भाव भगवान महाराज प्रकट हुए थे वासुदेव दत्ता के रूप में। वासुदेव दत्ता चेतने महाप्रभु जी के बड़े प्रसिद्ध भक्त थे। तो एक दिन वासुदेव दत्ता गए महाप्रभु जी के पास, कहने लगे मैं आज कुछ मांगने आया हूँ। चेतने महाप्रभु ने कहा कि जो मांगना है मांगिए, तुम शुद्ध भक्त हो, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। वासुदेव दत्ता ने कहा मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि आप सारे पतितों का उद्धार कर दो और सिर्फ मुझे उनके जो पापों का परिणाम है भोगने दो। ये तो बड़ा ऊंचा भाव है। वासुदेव दत्ता राम राम क्या होता है, हमारे में तो भाव नहीं है, हमारे में जितनी शक्ति नहीं है, भगवान से प्रार्थना करें आप सब पतितों का उद्धार कर दो उसको परिणाम हमें भोगने दो। पर आप जब इन महान संतों के विचारों को पढ़ते हो, उनके उपदेश को पढ़ते हो और श्रद्धा से प्रयास करते हो पालन करने के लिए, तो आप इनको भाव अस्त्र आनंद हो जाए। और हम जब भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम हैं मूर्ख नंबर एक, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, पर क्योंकि हम गुरु और भगवान के शरणों में विश्वास करते हैं तो उसके आधार पर चलते हैं, अंत में सफलता प्राप्त होगी। चैतन्य महाप्रभु छोटी आयु में ही बड़े प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे। छोटी आयु में ही जितने भारत के प्रसिद्ध संस्कृत के आचार्य थे सबको उन्होंने हरा दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो उस समय मायावती सन्यासियों की एक सभा चल रही थी और सन्यासियों की एक चर्चा थी। ये निमाई फंदर इतना बड़ा विद्वान है, ये क्या पागलों जैसे नाच रहा है और गा रहा है। तो महाप्रभु जी की आलोचना हुई थी। तो महाप्रभु के लोग भक्त तपन मिश्रा और चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जी की जाति का था, तो महाप्रभु उसके घर में निवास कर रहे थे। उन्होंने महाप्रभु से कहा हम आपकी बेटी नहीं सह सकते, आप आओ इनको मिलने के लिए। तो महाप्रभु गए उस सभा में जहाँ मायावती सन्यासी सब उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा मायावती ने आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, आप हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते, तो क्या आप पागलों जैसे नाच रहे हो और गा रहे हो। महाप्रभु ने उत्तर में क्या कहा, मेरे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने और कोई योग्यता नहीं, केवल योग्यता है क्या यहाँ इनाम के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम सब मूर्ख हैं, आप और स्वयं भगवान थे, हम हैं मूर्ख, पर हम अगर भगवान और महान संतों की वाणी में श्रद्धा रखेंगे और इसका पालन करेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे पहली बार, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को बोला ग्रंथों का विचरण करो। तो जो अमेरिकन भक्त हैं उनकी बड़ी इच्छा थी प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करें, तो वो चिंता में थे कैसे हम इन ग्रंथों को बांटेंगे सड़कों में। उस समय बहुत कम लोगों ने कृष्णा का नाम भी सुना था, उनके मन में भाव था और विश्वास था कि जो प्रभुपाद कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अपने जीवन को सुधारेंगे। तो हमारे उनके एक भक्त केशवदास अमेरिकन था, उसने एक दिन वो जो लौट रहा था संकीर्तन करके हरिनाम करके, तो एक पेट्रोल पंप में रुका, पेट्रोल डालने के $10 का पेट्रोल डाल। तो फिर उसने सोचा कि $10 लेने के बजाय मुझे इस पेट्रोल पंप के मालिक को कृष्णा बुक देने दो, जो सबके आई थी मेरी बात में। तो उसने उनसे कहा इन $10 के बजाय मैं आपको एक किताब दे सकता हूँ। तो उसने स्वीकार कर लिया किताब। तो उसके मन में यह भाव उठा कि अगर एक व्यक्ति एक किताब ले सकता है $10 के बजाय, दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं ले सकते। इस तरह वो प्रयास करते गए, रास्ते रास्ते अमेरिका में इतने ग्रंथ इतिहास है, ये बहुत कम संस्थाओं द्वारा ऐसा कार्य किया गया क्योंकि भक्त में यही भाव था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ग्रंथ का वितरण करो, मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं तो ग्रंथ का वितरण करो, तो कैसे ग्रंथ का वितरण किया जाए? तो अपना दिमाग लगा रहे थे और फिर भगवान ने एक उपाय दिया, दूसरा उपाय दिया। जैसे भगवान गीता में कहते हैं जो श्रद्धा से सेवा करते हैं अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे क्या करता हूँ, दूर करता हूँ। तो हम सब भक्तों में एक तरह से ये आनंद बना गया है कि हमें शुद्ध संदेश मिला है, शुद्ध ज्ञान मिला है और हमें बड़ी गहराई के साथ गंभीरता के साथ इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। दूसरी तरह से हम भक्तों के मन में जैसे सदाभिमान कह रहे हैं दुख होता है, कितने दुखी व्यक्ति हैं जो भगवान के शिष्य को हमें शिकार कर रहे, किसी न किसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए किसके साथ, भगवान की शिक्षा के साथ। और प्रयास करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। तो आज के संदेश के साथ बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें सलाह बना की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। बहुत ही समाज में हम हीरो बनाते हैं कईयों को, जैसे कईयों के कमरे में जाओ कोई फिल्मी कलाकार की तस्वीर है, कोई क्रिकेटर की तस्वीर है, कोई खिलाड़ी की तस्वीर है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे हीरो है और हम लोग एक हीरो है प्रभात्मा विजय वासुदेव और अनेक प्रसिद्ध भक्त हैं जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि किस प्रकार की चेतना भक्तों में होनी चाहिए और जिनके उदाहरण से हम प्रेरणा लेते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इन अनेक संतों में हमें प्रधान महाराज की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए, इन्हें भक्ति में सपोर्ट कर चाहते हैं। तो इंटरजेंडी के उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता बांटने के लिए। और कभी कभी भक्तों के मन में भाव होता है हम गीता बांट रहे हैं तो कोई पढ़ रहा नहीं, और जैसे मैंने कल आपको दो उदाहरण दिए थे रात को, अनेक उदाहरण हैं। एक बार गीता किसके हाथ में आ जाए कोई ना कोई जरूर पढ़ेगा, आज नहीं करता। कई उदाहरण हैं जहाँ दस दस साल किसने गीता छोड़ी नहीं, कोई खोला कोई प्रभावित हो गया। तो इन ग्रंथों के वचन की सेवा है, दिस इज द हाईएस्ट वेल्थ फॉर एक्टिविटी, ये सबसे ऊंचा दया का कार्य है। और वैष्णव के अनेक गुणों में एक गुण क्या होना चाहिए, दया। प्रतीक्षा करुणिका, करुणिका का अर्थ है दया के भाव। और भौतिक समाज में दया द्वारा लोग सोचते हैं कोई भौतिक सुविधा देना, पर आध्यात्मिक समाज में दया द्वारा ये है कि हम दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान दें जिसके द्वारा जीवन को सफल बना सके। आप सब क्यों भारी हैं कि आप इस मैराथन में जुड़े हो और आप सब प्रयास कीजिए बाबा जी की ग्रंथ आगे उत्तर हो। बाबा जी ने बड़ी बड़ी मेहनत से इन ग्रंथों को तैयार किया है। जब भगवत गीता है बाबा जी ने एक दफा पहले अनुवाद किया था और अपने हाथ से अनुवाद किया था। और प्रभुपाद जी ढूंढ रहे थे कोई व्यक्ति जो कि प्रकाश करने में सुझोग है। फिर प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि हाँ मुझे मेहनत के बताओ शायद मैं सुझोग दूंगा। तो प्रभुपाद जी जब वापस चल कर आए उन्हें पता लगा कोई मेहनत से बेच दिया सब्जी के रूप में। तो प्रभुपाद जी ने गीता का नाम फिर से किया, क्यों? जो चाहते थे कि ईश्वर गीता को पढ़े तो जीवन को अपना है। तो भक्तों में अगर प्रभुपाद जी ने प्रचार की सेवा को बल दिया, ग्रंथ के वितरण की सेवा को बल दिया, केवल इसी कारण क्योंकि प्रभुपाद जी में भी यही भाव था जो प्रहलाद महाराज के हृदय में है। इसीलिए प्रभुपाद जी रात को जागते थे चार चार पाँच पाँच घंटा 10 बजे से 11 बजे रात को जाग जाते थे और नाम बनाने बात शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ें और अपने जीवन को सुधारें। और अगर आज हजारों हजार सारे विश्व में जुड़ रहे हैं कृष्ण भक्ति के साथ, उनका मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का संदेश। तो बड़े उत्साह के साथ हमें सेवा में जुड़ना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, दिस इज दी हाईएस्ट लेवल फॉर एक्टिविटी, जो सेवा है समाज के सुधार के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है, सवाल कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं, काफी लेट हो गया। तो सब जुड़े हुए हो मैराथन में, सब सेवा कर रहे हो? आप में से कौन कौन से भक्त हो जो कि जुड़े हुए हैं सेवा में, मैराथन की सेवा में? कौन कौन हो जो नहीं जुड़े हुए सेवा में? तो जो नहीं जुड़े